가이 거울 하리프레 만는데
하레 크리스나 하레 크리스나
크리스나 크리스나 하레 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 람 하레 람 람 람 하레 하레
하레 크리스나 आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद स्पेशली गुरुजन प्रोजी का धन्यवाद देंगे कि आज उन्होंने द्वारका मंदिर से स्पेशली बुलाया हमें अपॉर्चुनिटी दिया कि हम यहाँ कुछ बोल सकें उनके भक्तों के बीच आप लोगों का बहुत गुणगान सुना है गीता कॉलोनी के भक्त जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिवोटीज हैं तो कार्यक्रम थोड़ा लेट शुरू हुआ है 8:30 में कब तक पूरा करना है कितने बजे तक 9:15
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा
हरे कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम
राम राम
हरे हरे
हरे हरे
तो हमारे बीच में इस ड्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु तो प्रभु जी बेसिकली द्वारका से हैं और कॉन्ग्रीगेशनल हेड है द्वारका में और फरीदाबाद और दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर प्रभु जी प्रचार करते हैं और YouTube के माध्यम से कई लाखों लोगों को प्रभु जी भगवान की वाणी जो है वो आज दे रहे हैं तो हम लोगों का परम सौभाग्य है तो हम तीन बार हरि बोल बोलकर प्रभु जी का स्वागत करेंगे हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
हरि बोल
कुछ रिक्वेस्ट है कृपया अपने फोन जो है वो साइलेंट या वाइब्रेटर मोड पे डाल दें और अगर यहाँ बच्चे हैं तो बच्चों का क्लास नीचे हो रहा है कृपया हम नीचे भेज सकते हैं
पहले मंगलाचरण करते हैं फिर आज का कार्यक्रम शुरू ओम ज्ञान तिरंधस्य
चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यानोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं तदा वयं ददाति सर्वज्ञानं वन्देहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुर्वैष्णवांश्च श्रीरूपं सारजातं सहं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साधुवैतं साधुभूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णाराधा सहनमलिका श्रीविशाखानिवासिनः हे कृष्णा करुणासिन्धो लीलाबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्य कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपादाय कृष्णश्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकामिने
हरे कृष्णा तो मुझे प्रभु जी के द्वारा आदेश दिया गया कि कृष्ण भावना भवित क्यों आवश्यक है व्हाट द इम्पोर्टेंस ऑफ गेटिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस इन आवर लाइफ उसके ऊपर कुछ बोला जाए वैसे तो कोई योग्यता नहीं है बोलने के लिए लेकिन गुरु महाराज और श्री प्रभुपाद के आदेश अनुसार प्रचार कर रहे हैं और भवानी कृपा से सक्सेस भी है क्योंकि गुरु महाराज की इच्छा है और गुरु महाराज के पास तो कोई त्रुटि हो मेरे से तो मुझे क्षमा करिए। तो आज हम भागवतम के एक श्लोक पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार से पांडव जो थे उन्होंने किस प्रकार भगवान का धाम प्राप्त किया और बड़ी सरलता से स्वशरीर वो भगवत धाम में प्रवेश करे। आप जानते हैं महाभारत के बारे में, सभी लोग जानते हैं महाभारत के बारे में। तो महाभारत जो युद्ध है उसका नाम श्री प्रभुपाद बोलते हैं ग्रेट इंडिया। महाभारत मतलब ग्रेट इंडिया, हमारे भारत की धरोहर जो ग्रेट है उसमें महाभारत। आजकल कुछ ऐसे पाखंडी हैं जो ये कहते हैं महाभारत नाम का कोई युद्ध ही नहीं हुआ। कुरुक्षेत्र की भूमि है वहां पर ज्योतिषर नामक स्थान है, ऐसी कई सारी चीजें ब्रह्म सरोवर है जो बताती है कि यहाँ पर भगवान ने लीला करी है। परंतु जिनको विश्वास ही ना हो, अगर फेथ ही नहीं है, भक्ति की पहली सीढ़ी क्या है? आधो श्रद्धा तथो साधु संग। साधुओं का संग तो मिलता है हमको, माताएं भी साधवी हैं, साधु हैं, परंतु श्रद्धा जो है ना ये बड़ी कोमल श्रद्धा है। जैसे ही हमारी इच्छा से विपरीत कोई कार्य होता है हम तुरंत भगवान को दोषारोपण करते हैं, भगवान तुम्हारे कारण ऐसा है। अगर मान लीजिए कक्षा में आपके बच्चे के 90% मार्क्स आए, 90% आजकल तो कॉमन सभी के आ जाएंगे आज, पर आ जाए अगर 90% तो क्या कहेंगे, किसने किया? हाँ जी बच्चे ने बहुत मेहनत करी। अरे बच्चा बोलेगा मैंने किया, पेरेंट्स बोलेंगे माता पिता मैंने मैंने मेहनत किया। अरे आप तो ड्यूटी से लेट आते थे, मैं तो काम छोड़कर खाना भी नहीं बनाती थी, पढ़ाती रहती थी। हस्बैंड बोलेगा अरे तुमने क्या, तुम जब सो जाती थी उसके बाद मैं सुबह उठकर किसको स्कूल छोड़ने जाता था, बस तक मेरी मेहनत। टीचर कहेगी मैं और यही मैं के कारण हम फंस गए संसार। रावण से पूछा गया रावण तुमको किसने मारा, रावण कहता है मुझको मैंने मारा। किसने मारा? मैं। ईगो बहुत छोटा शब्द है लेकिन बहुत ही मुश्किल है संसार से चला जाना। इसे भक्ति में आने के बाद भी हमारे अंदर से अहंकार चला जाएगा। भगवत गीता का एक प्रचलित श्लोक है जिसे श्रील प्रभुपाद कई बार चर्चा करते थे। कौन सा श्लोक है जो सबसे ज्यादा प्रभुपाद जी ने बोला भगवत गीता में से और हमारे प्रचार में भी सरलता से हम उस श्लोक को बोलते रहते हैं शुरुआत से? कौन सा श्लोक बता सकते हैं? हम भगवत गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक बोलते हैं, है ना? क्या है? सर्वधर्मान् परित्याज मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। डरो मत, बस मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे पाप मैं दूर कर दूंगा शुरुआत। लेकिन उसके बाद में भगवान किस शरणागति की बात कर रहे हैं? सर्वधर्मान् परित्याज माम एकम। भगवान ने कहा दुखम तिकम, क्या कहा? एकम। वो एकम कौन है? वो एकम क्या चीज है जिसको शरणागत करना है? क्या दंडवत प्रणाम करना, अपने हाथों को खींच करके इसको हम शरणागत, या अपने कपड़े अपने वस्त्र बदल लेना इसको हम शरणागति बोले? क्या चीज है जिसको कहा भगवान ने सर्वधर्मान परित्याज, सब कुछ छोड़ दो मेरी शरण में, वो क्या चीज है? हाँ जी सेवा छोड़ दो, ईगो को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। भगवान ने कहा अपना जो ये मिथ्या अहंकार है इसको मेरी शरण में छोड़ दो, लेकिन वो छूटता नहीं। जितना जितना व्यक्ति भक्ति के मार्ग में आता है, एक बार मैं वृंदावन में जा रहा था, वहां पर वृंदावन धाम का अपना एक वातावरण है, वहां पर स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि भक्ति में कोई व्यक्ति डूब सकता है। तो ये समझ में नहीं आता, सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, ये भौतिक संसार का व्यक्ति डूब रहा है, भक्ति में कोई व्यक्ति कैसे डूब सकता है? लेकिन भक्ति में व्यक्ति कैसे डूबता है, जिस प्रकार से आपने सुना होगा नदी या समुद्र में वही व्यक्ति डूबता है जो व्यक्ति तैरना जानता है। तो जो व्यक्ति भक्ति में आता है और भक्ति के इस सागर से तैरना जान जाता है वही इसमें डूबता भी है। भगवान ने कहा सर्व धर्मान् परित्याजम् माम एकम शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो। भगवान ने नहीं कहा अहम तम सर्व अपराधेभ्यो, तो अगर अपराध में ही भगवान क्षमा करने वाले हैं तो अगर निरंतर हम भक्ति मार्ग में अपराध करेंगे तो हमारे ऊपर बहुत भारी कष्ट आते हैं। क्योंकि जिस दिन हम पहले दिन भगवान की भक्ति मार्ग को ज्वाइन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, तुरंत भगवान हमारे क्या करते हैं, सारी चीजों को हटा देते हैं। अब ना ही तो किसी पर कोई नक्षत्र काम करेगा। अभी बोले ना, मुझे अंगूठी पहननी है, ज्योतिषाचार्य को दिखाया है, एस्ट्रोलॉजर को दिखाया है, ना ही कोई उसके ऊपर देवी देवता काम करेंगे। अब क्यों, उसकी डोर किसके हाथ में आ गई है, स्वयं कृष्ण के हाथ। कृष्ण जिस प्रकार से अर्जुन ने अपने को शरणागत किया भगवान ने, दीन बंधु दीनानाथ मेरी डोर तेरे हाथ, अपनी डोर उन्होंने हाथ में पकड़ा दी, जो मर्जी भगवान करे। और इसके करने के कारण ये भागवतम का श्लोक उत्पन्न होता है। क्या कहा गया है, तत ध्यानम उतित्राय भक्तया विशुद्ध कृष्णम परे तस्मिन् नारायणम पदे एकांत मतियो गतिम। एकांत मतियो, एक ही मति कही उन्होंने क्या, नारायण पदे, नारायण के चरणों में। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य यार इच्छे नाचे ते ताते करे नृत्य। भगवान की इच्छा से 33 करोड़ देवी देवता नाचते हैं, शिवजी ब्रह्मा जी नाचते हैं, गणेश नाचते हैं, हनुमान नाचते हैं, तो हम तो क्या चीज, क्या कहते हैं वो, किस खेत की मूली। तो अगर हम चाहते हैं कि जिस प्रकार पांडवों ने सो शरीर, आदमी सुनता है मृत्यु होने का मतलब शरीर का त्याग करके आत्मा का चला जाना, इसको मृत्यु बोलते हैं ना, डेड बॉडी, डेथ आ जाना। परंतु पांडवों ने भगवान की ऐसी सेवा करी कि उन्होंने सब कुछ भगवान के लिए समर्पित किया। आदमी कहता है भक्ति में आने के बाद में ना दुख नहीं आने चाहिए, और ज्यादातर लोग इस पे कमेंट भी करते हैं, अरे माला कर रहे हो फिर भी बीमार पड़ गए, माला की दवाई है, माला करते फिर भी बीमार पड़े, कोई हॉस्पिटलाइज हो जाए, कोई डिवोटी हो रहे, इतनी भक्ति करता तो हॉस्पिटल चलाए, काय बात की भक्ति। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, क्या पर्पज है, वो हम समझ नहीं पाते। क्यों परेशानी आ जाती है भक्त को, इसलिए आती है क्योंकि भगवान उस भक्त की जो बचा हुआ उसका कर्मा है उसको काट करके उसको भक्ति मार्ग में आगे बढ़ाना चाहते। जैसे कोई छोटा बच्चा है, उसके पैर पर अगर कोई बहुत बड़ा फोड़ा हो जाए, इंफेक्शन, आज तो बारिश में रहते हैं, तो फोड़ा हो जाए तो क्या करेंगे माता पिता, कहेंगे कि फोड़ा रहने दो, क्या कहेंगे इसको कटवा, कटवाने जाएंगे जब डॉक्टर के पास, तो सीजर्स कैंची का इस्तेमाल करें, तो उसमें बच्चे को दर्द होगा कि नहीं होगा, माँ को भी दर्द होगा, पिता को भी दर्द होगा, या हमारे बच्चे के, लेकिन वो किस लिए किया जा रहा है, कटिंग ठीक करने के लिए, खराब करने के लिए। इसी तरह से भक्त के जीवन में कभी कष्ट आता है तो ये भौतिक संसार वालों की तरह कर्म का बंधन नहीं है, हाथ में बोलता कर्मों का फल जैसा, भक्त के जीवन में इसीलिए कष्ट आता है क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर भगवान शुद्धिकरण कर रहे होते हैं और वो धीरे धीरे उसको ऐसी परीक्षाओं में डालते हैं जहां से उसका इलाज हो रहा होता है, ट्रीटमेंट। तो जब भी कष्ट आए तो क्या सोचेंगे, क्या हो रहा है। तो भक्ति में कोई व्यक्ति आपको बुरा भला भी बोल दे तब भी क्या सोचना चाहिए, क्या हो रहा है। और उदाहरण है हमारे पास, पांडव जंगल में घूम रहे थे, उनके पास किस चीज की कमी थी, बल की कमी थी, भीम के बराबर कोई बलशाली नहीं है, गांडीवधारी अर्जुन की तरह कोई धनुष बाण नहीं चला सकता, युधिष्ठिर महाराज की तरह कोई धर्म पलायन नहीं हो सकता है, परंतु फिर भी कष्ट कितने जंगलों में भटकना पड़ा, कितने साल, हाँ जी 13 साल, 12 साल तो ज्ञात, 1 साल अज्ञात, बिना बताया ऐसी स्थिति में रहे, लेकिन कभी बोला कंप्लेनिंग, अरे देखो 12 साल से कृष्ण के साथ है, हरे कृष्ण जप रहे हैं, फिर भी देखो जंगल में रह रहे हैं, घर भी नहीं बना, एक गाड़ी भी नहीं है, पर्पस क्या है हमारे जीवन का। तो इसलिए बहुत जरूरी है जानना कि आध्यात्मिक जीवन की महत्वता क्या है, क्यों हम करें इसको, क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवद गीता के अंतिम श्लोक में संशय अपना निर्णय देते हुए क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मति नमः। मेरी मति ये कहती है, ये ध्रुव नीति है कि जहां कृष्ण है, जहां अर्जुन जैसा कोई भक्त है, वहां पर ये चीजें होने वाली, क्या, श्री मतलब की लक्ष्मी धन और विजय विक्ट्री, उस व्यक्ति की विक्ट्री। तो जो व्यक्ति ये जानता हो कि अभी तक मेरे जीवन में कोई मुझे विक्ट्री नहीं मिली है, उस व्यक्ति को पांडवों का चरित्र पढ़ना चाहिए, विक्ट्री मिलेगी लेकिन शुद्धिकरण के बाद। ये थोड़ा सा इसमें क्लॉज, देवी देवता क्या करते हैं, आप उनसे प्रार्थना करते हैं, वो तुरंत आपको प्रदान करते हैं, लेकिन भगवान क्या करते हैं, थोड़ा इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं ना ऊपर वाले के घर देर है पर, तो ऊपर वाला कौन है?
कृष्ण।
हाँ बस, और कोई नहीं ऊपर वाला, बाकी सब नीचे वाले। यदि भौतिक संसार में घुमाते हैं, ऊपर वाला एक ही है कृष्ण, उसका नाम ही नहीं पता, एड्रेस नहीं पता लोगों। तो इसलिए हमें जानना चाहिए कि किस प्रकार से कृष्ण भावना मग्न में हम दृढ़ हो जाए। आप देखिए, पांडव इतने ज्यादा शरणागत थे, इतने ज्यादा शरणागत थे कि बिल्कुल भी डगमगाते नहीं थे अपने मार्ग से। और देखिए, सत्य वचन ऐसा कहते थे कि अपनी चिंता ही नहीं है बिल्कुल कि कल मैं मारा जाऊंगा। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन दुर्बुद्धि आकर के सहदेव, कौन थे सहदेव, कौन थे? हाँ जी, आवाज नहीं आ रही आपको? पांडव के पांचवें भाई नकुल सहदेव। सहदेव किस चीज में एक्सपर्ट थे? हाँ जी, ज्योतिष विद्या में एक्सपर्ट थे। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन ने सहदेव से पूछा, अपोजिट पार्टी दुश्मन से पूछ रहे, भाई मैं जीतूंगा कैसे, युद्ध तो होने वाला है महाभारत का, लेकिन इसे जीतने का तरीका क्या है? तो ये बात सुनकर के सहदेव, देखिए सत्यवादी पार्टी वाले लोग डरते नहीं, बोले बता देंगे फिर भी जीतना हमने, क्यों क्यों हमारे साथ कृष्ण है, ये भरोसा उन्होंने बता दिया। कहा कि देखो, अगर आप कालबलि यज्ञ करते हो अमावस के दिन, कालबलि यज्ञ अमावस के दिन अगर आपने किया तो क्या होगा, आप विजय हो जाओ। दुर्योधन बोला इतना सरल क्या? हाँ, आपके केस में लिखा है ज्योतिष चार्ट में कि इस महाभारत युग में युद्ध में जो भी व्यक्ति दोनों पार्टी में से पहले कालबलि यज्ञ कर देगा वो विजय हो जाएगा। धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा सरल उपाय, हम लोगों को भी चाहिए होता है ना, इजी सॉल्यूशन टू विक्ट्री। प्रभु जी को तरीका बताइए कैसे भगवत नाम जाया जाए, बस लंबा वाला नहीं चाहिए, शरणागति हो, मिथ्या अहंकार छोड़ो, गुस्सा नहीं आना चाहिए, चार माला वो चार नियम पालन करो, 16 माला सुबह जप करो, सेंटर में मंडे को आओ, भागो भागे आओ, सेवा करो प्रभु जी, बस। वी डोंट नीड सो मच, सिंपल रास्ता, सिंपल चाहिए ना सर, तो वो भी चाहता था सिंपल रास्ता। गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज कहते हैं देयर इज नो सिंपल वे। एक बार मैं महाराज के साथ मायापुर में था परिक्रमा में, तो सारे भक्त परिक्रमा में धीरे 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 एक गार्डन था छोटा हुआ, तो उसमें से निकल के जा रहे थे, और मुझे सेवा मिला था महाराज के चरण पादुका उठाने, तो उठा रखे थे, चल रहे थे, तो देखा महाराज सबसे लास्ट में थे और सारे भक्त से उतर के जा रहे थे। महाराज ने पूछा ये सब भक्त कहाँ जा रहे हैं, तो मैंने अपने अंदाजे से अपनी भौतिक बुद्धि से बोल दिया, मैंने कहा महाराज शॉर्टकट। तो महाराज बोलते पर रास्ता तो ऐसे जा कैसे है, मैंने कहा जी महाराज, तो बोलते हैं कि वी विल टेक दैट टर्न, क्योंकि परिक्रमा शॉर्टकट हो जाएगी ना, परिक्रमा अगर वहां से जा रही है, ये शॉर्टकट से बीच के खेत कल्याण से निकल के जा रहे हैं, इनकी परिक्रमा का कुछ अंश रह जाएगा, पूर्ण फल नहीं मिलेगा, तो पूर्ण फल नहीं मिलेगा तो भक्ति में देयर इज नो शॉर्टकट, पूरा करना ही पड़ेगा, जितने साल बाद भक्ति प्राप्त होगी उतने साल बाद ही होगी, इंतजार करना है और भरोसे के साथ। तो इस प्रकार से धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन को भी चाहिए था तुरंत विजय, उसने कहा कालबलि यज्ञ करूंगा, सब में ऐलान कर दिया। अभी भगवान जो है ना वो चिंता में बैठे, अरे अर्जुन तो सो रहा है मजे से और यहाँ कालबलि यज्ञ करके विजय पा जाएगा, और वो भी देवी देवता भी तो मेरे ही अंश है, अगर वो उसको विजय करा देंगे तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। अर्जुन सो मत, उठो उठो उठो। अर्जुन बोला प्रभु सोने दीजिए, नाइट टाइम रेस्टिंग। तो है ना, उसको बोला भगवान ने तुम सो रहे हो, पता है वो कल कालबलि यज्ञ करके और अमावस के दिन और विजय प्राप्त कर ली। तो बोले कि तुम सो रहे हो, तुमको चिंता नहीं है, कहा कर दो, जिसकी चिंता करने के लिए स्वयं कृष्ण जाग रहे हो वो तो मजे से सोएगा, खाओ पराठे मारो खरटे, वो तो सोएगा, क्यों, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है। बोलिए, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी वो चिंता करने वाले, लेकिन ऐसा नहीं है सब कुछ उनके ऊपर छोड़ के सेवा ही ना करो, हमें सेवा भी करनी चाहिए। भक्त का क्रिया ये होनी चाहिए कि भगवान को सेवा में ना लगाए, भगवान की सेवा करें। परंतु अर्जुन सारा दिन सेवा करके थक गया, भगवान के कहने पे तो युद्ध कर, भगवान के कहने पे सब कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा भगवान आप हमारी चिंता करें, बताइए क्या करना है। भगवान बोले तुमसे कुछ नहीं होना है, जो भी करना है मुझे करना है। तुरंत भगवान यमुना नदी के किनारे वृंदावन आते हैं, और यमुना में बैठ जाते हैं। कार्य बलि यज्ञ क्या होता है? उसमें पितरों को दान दिया जाता है, पिंड दान, पितरों का पूजा की जाती है। पिंड दान पितृ पूजा करने बैठ गए, स्वयं कृष्ण ब्रह्मांड नायक भगवान एक भक्त की सेवा में लग गए। और फिर वहां पर जब पंडित लोगों को पता चलता है, कहते हैं अरे अमावस से एक दिन पहले बैठे हुए हैं कृष्ण और पितृ अर्पण कर रहे हैं, पितृ तर्पण करने का दिन है अमावस, एक दिन पहले चौदस को नहीं हो। तो सारे पंडित पुजारी जितने भी ब्रज मंडल के 84 कोस के थे, सब सोचने लगे कि अगर कृष्ण कर रहे हैं, ये लक्ष्मीपति हैं, भगवान द्वारकाधीश हैं, इनके पास पैसे की कमी नहीं, अगर हम इनके झूठे झूठे में भी बैठ जाएंगे दक्षिणा तो मिल ही जाएगी, तो भले ही कालबलि यज्ञ हो या ना हो पैसा तो मिलेगा। तो उन्होंने इस चक्कर में आकर जितने भी ब्रज मंडल के ब्राह्मण आदि थे सभी आकर के बैठे, सब बोले कि चलो तर्पण शुरू हो गया। ये बात देवी देवताओं के लोग तक पहुंच गई कि कृष्ण अमावस से एक दिन पहले अमावस मना रहे। तो उन्होंने कहा लगता है इनका वैष्णव कैलेंडर गलत है, तो रीप्रिंटिंग करना। तो आकर के सूर्य और चंद्र जो दिन और रात को देखते हैं वो आकर के बोलते हैं, बोले प्रभु आप क्या कर रहे हैं, अमावस के दिन इसको किया जाता है काल बलि यज्ञ पितृ तर्पण, आपने आज ही शुरू कर दिया, आपको पता नहीं है अमावस कल है। तो भगवान मुस्कुराते हुए कहते हैं, इधर उच्चारण चल रहा है, हजारों ब्राह्मण बैठे यमुना के किनारे, ये तुरंत बोलते हैं, कहते हैं कि अमावस कब आती है, जब सूर्य और चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं तभी तो अमावस है, नो मून लाइट, चंद्रमा पर कोई रोशनी नहीं होती है, और क्योंकि उसके आगे सूरज आ जाता है तो सूरज आगे खड़ा है पीछे चंद्रमा खड़ा है, तो हो गया अमावस। जब दोनों एक लाइन में आ गए तो हो गई अमावस, चलो करो तर्पण, आज ही तर्पण हुआ। अभी जिस अमावस को दुर्योधन ने किया वो तो अमावस है ही नहीं, क्योंकि एक दिन पहले अमावस करा दी कृष्ण। तो जब कृष्ण है रक्षा करने वाले तो फिर उस व्यक्ति को ज्यादा टेंशन नहीं लगती कि अंगूठी पहन लो, ज्योतिष के पास चला जाओ, एक मार्ग रहना चाहिए कृष्ण भाव में भवित, बस अब जो होगा बस, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी प्यूरिफिकेशन के लिए होना शुद्धि के। माता पिता कभी कभी बच्चे के कान खींचते हैं, आप लोग खींचते भी नहीं, खींचते हैं खींचना चाहिए, बच्चों के माँ बाप कान खींच सकते हैं। श्रील भगवान कहते हैं गुरु को हक है शिष्य के कान खींचना, माँ बाप को हक है बच्चों के कान खींचना। क्यों खींचते हैं वो कान? ताकि आगे अच्छे मार्ग में चले। इसीलिए भगवान को भी हक है अपने भक्त के कान खींचना, ताकि वो कहाँ चले, कुमार्ग से सुमार्ग की तरफ। इसलिए कभी कोई कष्ट आए तब भी हमको क्या नहीं करना चाहिए, ये छोड़ देना चाहिए। कई बार लोग घबरा जाते हैं, मैंने देखा है भक्ति उतरने के बाद में भी भक्त कांग्रेगेशन में आकर पूछते हैं, प्रभु जी आपको पता है हमारे पड़ोसी हमारे हरे कृष्ण से इतना तकलीफ रखते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर जादू टोना किया है। जादू टोना काम करेगा क्या भक्त में? जिसने कंठी माला धारण करी हो उनसे मारा, जिसने तिलक लगाया हो, जो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे इस मंत्र का उच्चारण करता हो, क्या वो व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना काम करेगा? कुछ काम नहीं करता, कोई काम नहीं करता जादू टोना। लेकिन फिर भी लोग घबरा जाते हैं। घबराने का कारण क्या होता है? जादू टोना नहीं होता है, हमारी श्रद्धा कमजोर है, कोमल है। तो क्या बढ़ाना है हमको, कैसे बढ़ेगी? जितना ज्यादा आप हरि नाम करोगे, साधु संग करोगे, अनर्थ निवृत्ति होती जाएगी, ये ऊपर नीचे चलेगा, उतनी उतनी श्रद्धा गूढ़ गाढ़ श्रद्धा हो जाएगी। कोई बोलेगा अरे पागल हो गए हो, कहां फंस गए हो, ये इस्कॉन के चक्कर में, ये तो ना आपका हेयर स्टाइल चेंज करा लेते हैं, ये वाली फैमिली है। तो डरना नहीं है, लगे रहना उसी मार्ग में, क्योंकि आनंद का अनुभव पदम पदम पर होने वाला है। आनंदम बुद्धि वर्धनम, आनंद की वृद्धि हो जाएगी अगर हम इसी मार्ग पर लगे रहे। घबराना नहीं। एक बार एक व्यक्ति फोन करके बोला, प्रभु जी मालूम है आपको, हमारे घर के बाहर किसी ने ना हल्दी की गांठे और ना रोली चावल ये डाल दिया, लगता है कोई ना हमारे ऊपर जादू, क्या करें, क्या कर सकते, क्या करना चाहिए? वो तो करना ही है, और उसका क्या करना चाहिए? घबराहट जो आ रही है, घबरा रहा है अंदर से, उसका क्या करना चाहिए? तो वो बोले क्या करें, मैंने कुछ नहीं, आप उठाओ वहां से सामान जो है हल्दी मिर्ची नमक उठा लो, वहां पे एक पर्ची डाल दो कि कल टमाटर भी डाल देना, हम टमाटर की सब्जी बनाएंगे। घबराना क्यों? अगर जादू टोने में या किसी के नींबू मिर्ची में इतनी शक्ति होती कि वो आपका जीवन बदल सकता, तो फिर हमारे बॉर्डर पर कारगिल में या फिर कितने सारे लोग मारे जाते हैं, उनको गोलियों की बेल्ट उतार करके नींबू मिर्ची की बेल्ट बनानी चाहिए, नजर नहीं लगेगी, गोली नहीं लगेगी। 10 लाख की गाड़ी को रक्षा कौन करेगा? नींबू मिर्ची। क्या हमने फालतू चीजें बनाई है? भागवत तत्व निहितम गुणाय, भागवत तत्व बहुत गुण है। ये नींबू मिर्ची नहीं है भागवत पूजा करना। बोले हम पूजा करते हैं जी, हम भी भक्त हिंदुस्तान में, अभी गुरुजन गुरु जी शेयर कर रहे थे, हिंदुस्तान में प्रीचिंग करना कितना मुश्किल है क्योंकि आदमी पहले से भरा हुआ, तो इतनी तो नींबू मिर्ची फिलोसफी को भक्ति बोलता है। लेकिन कृष्ण भक्ति जो है ये कैसी है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमम। उत्तम भक्ति क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम, सारी अभिलाषाओं से क्या हो जाओ? जीरो। ठीक है, वो बातें माला करते करते भी मन में पता नहीं 100 तरह का ख्याल आता, कितना मुश्किल। तो ये एक ही चीज पर डिपेंडेंट है, गुरु कृपा। दो प्रकार की सिद्धि होती है, साधना सिद्धि, कृपा सिद्धि। तो साधना सिद्धि करने के लिए हमारा शरीर काम नहीं कर रहा, हम करते तो हैं भक्ति लेकिन साधन सिद्धि हो जाएगी मुश्किल है। गुरु के दिए आदेश पर अगर हमने सेवा कर ली, उन्होंने कहा 16 माला करो कर लिया, उन्होंने बोला ये भक्ति करो कर लिया, उन्होंने बोला ये ग्रंथ पढ़ो पढ़ लिया, उन्होंने कहा कि आप ये काम मत करो नहीं किया, ये काम करो किया, ये करने से कृपा मिलेगी, कृपा से सिद्ध हो सकते हैं लेकिन साधना से सिद्ध हो नहीं पाए, बहुत मुश्किल। कई बार लोग सोचते हैं गुरु को क्या सुनना, क्या जाना, मंदिर जाने की आवश्यकता, तो मैं सब कुछ जानता हूँ जी। हमारे घर में गीता है, पढ़ी हुई है, पूछो ना लोगों से आपने गीता पढ़ी है, कहाँ पढ़ी है, कैसे पढ़ी है, बोले यथारो जैसी दी थी पॉलिथिन कवर में डिस्ट्रीब्यूशन टाइप में वैसी है। यथारूप नहीं रखना, उसका पॉलिथिन कवर उतारना है, पढ़ना है और उसको मानना है। कई लोग बोलते हैं भगवान को मानते हैं, हम भगवान को जानते हैं लेकिन भगवान की बातों को नहीं मानते। बच्चा बोले माता पिता ये है मेरे, मम्मी पापा ये है मेरे, बता दे ये मेरी मम्मी पापा, लेकिन मम्मी पापा बोले ये काम नहीं करना, वो करे तो क्या करेंगे उसको? अच्छा बच्चा बोले खराब बच्चा, तो हम भी भगवान के खराब बच्चे हैं जो भगवान का कहा नहीं माने, भगवान ने जो कहा है वो हमें करना चाहिए। तो कर क्यों नहीं पाते हैं? क्योंकि हम कंजूस हैं। क्या है हम लोग कंजूस? को एक और शब्द संस्कृत में बोलते हैं कृपण, कृपण माइजर, कंजूस है। भक्ति करने में जितनी कंजूसी है इतनी प्रसाद पाने में कंजूसी नहीं है, प्रचार करने में जितनी कंजूसी है इतनी घूमने फिरने में कंजूसी है। तो हम सेवाओं से जितनी कंजूसी करते हैं, प्रचार से जितनी कंजूसी करते हैं, भक्ति से जितनी कंजूसी करते हैं, वो उतनी कंजूसी हम खाने के समय नहीं करते। एक जगह शास्त्र में लिखा है जो सच में कंजूस होते हैं ना, पैसा नहीं देते हैं, दान नहीं देते हैं, ऐसे कंजूस लोग बहुत है संसार में। कहते हैं कि दानी से ज्यादा कंजूस बड़ा दानी होता है। इसमें ना कभी स्टेटमेंट आती है, दानी से ज्यादा कंजूस बड़ा दानी होता है। बताओ कैसे? दानी से ज्यादा कंजूस बड़ा दानी होता है, कैसा स्टेटमेंट है शास्त्रीय? पता कैसे? दानी जो होता है वो कुछ अपने लिए इस्तेमाल करता है और कुछ भगवान की सेवा में लगा, कुछ अपने लिए कुछ भगवान के। लेकिन जो कंजूस होता है वो ना तो दान देता है और ना ही अपने पे खर्च करता है, बचा बचा के रखता है। तो जब वो समाप्त हो जाता है, उसका मृत्यु आ जाती है और काल रूपी गाल के अंदर जब वो प्रवेश कर जाता है, उसके बाद में जो कुछ भी बचता है उसको लोग बांट करके खा जाते हैं। दान तो दिया उसने लोगों को लेकिन अपने मरने पर, मरने के बाद में दिया, और उसमें से कुछ भी अंश उसने अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया, बेचारा खाया भी अभी कुछ नहीं और मर गया, बहुत कम से कम खा पी करके भगवान की सेवा, वो बड़ा दानी हो गया। दानी से ज्यादा कंजूस जो है वो बड़ा दानी बन जाता है। ऐसे एक बार एक व्यक्ति था कंजूस, उसकी मृत्यु आ गई। मृत्यु आने के बाद में उसको कंजूस इतना था, कभी भगवान की सेवा में कुछ दिया ही, कभी कुछ नहीं दिया। तो व्यक्ति भगवान के धाम पहुंचा, क्योंकि मृत्यु के बाद में आपका निर्णायक समय आता है ना, डेस्टिनेशन देने से पहले बोला जाता है कहां लेके जाएंगे इस व्यक्ति। तो वहां पर एक एजेंट रखा है भगवान ने अपना, मैनेजर, वो बताता है इसकी
इसने क्या कार्य किया है, कहाँ लेके जाना है इसको, नरक स्वर्ग भगवत धाम पृथ्वी लोक तब लोग जन लोग महर लोग पाता सूता बहुत सारे डेस्टिनेशन, कौन सी जगह इसकी ट्रेन को लेके जाना है, ये निर्णय लेने वाला एक मैनेजर है। क्या नाम है उसका, आप सब जानते हैं, मिले हुए चित्रगुप्त। वो जो मैनेजर है ना वो बताता है कहाँ लेके जाना, बोले ये कंजूस को ले जाओ, कहाँ ले जाएंगे कंजूस को, कहाँ ले जाएंगे जिसने कभी भगवान की सेवा में कुछ नहीं लगाया, ना शरीर लगाया ना मन लगाया ना तन लगाया ना धन लगाया, कहाँ ले जाएंगे, नर्क में ले गए। तो ताड़ना मिलने लगे, इसे मारा पीटा गया, ये नाखून खींचे जा रहे हैं, ये बाल खींचे जा रहे हैं, ये शरीर से ऐसा हाल हो गया उसका, पूरा तड़पने लगा और वो बड़ा भगवान को प्रार्थना। अभी याद आया बोले वो इस्कॉन वाले आते थे, बोलते थे हरि नाम लो भगवान बचा ले, वो उस टाइम तक शरीर में रहा तब तो लिया नहीं, अभी ले लो क्या पता, जोर जोर से बोलने लगा क्या, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला तो भगवान तक आवाज जाती है, जाती कि नहीं जाती, हरे कृष्णा बोलते तो भगवान सुनते नहीं सुनते, अजीब सुनते नहीं है, भगवान आकर के उस व्यक्ति को आलिंगन कर लेते, गले लगा लेते, हमें दिखता नहीं है क्योंकि हमारी दिव्य दृष्टि नहीं है ना संजय जैसी, हम देख नहीं पाते, भगवान आलिंगन, अरे मेरे बेटे आ जा, तूने पहली बार हरि नाम लिया, वो इतने प्रेम से। कहते हैं कि वो जिह्वा जो भगवान का नाम उच्चारण करती है वो अयोध्या की भूमि बन जाती है और उस पर राम प्रकट हो जाते हैं, वो भूमि जब उस पर कृष्ण का नाम उच्चारण करने की इच्छा व्यक्ति के मन में आती है वो भूमि गोकुल बन जाती है और उस पर कृष्ण प्रकट हो जाते हैं, और जब हम आनंद मग्न होकर के हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, राधा कृष्ण रास नृत्य करते हैं, उस व्यक्ति की जिह्वा पे ये जिह्वा रास मंडल बन जाती है। सोचो इस स्थिति है हमारे हरि नाम की, वो व्यक्ति चला दिया भगवान का नाम, भगवान बोले अरे भाई ये तो हो मेरा नाम ले लेगा, पहली बार ऐसा कोई देखा नरक में आके नाम ले रहा, कुछ पुण्य हो इसके तो इसको निकाल लिया जाए, वहां से निकाल के पृथ्वी भेजे, पृथ्वी से फिर इस्कॉन वाले मिलवाए, वो हरि नाम करे कुछ शास्त्र सुने तो आ जाएगा भगवान, तो भगवान उसके लिए अरेंजमेंट करने लगे। अब उसने एक बार हरि नाम लेते ही नरक में पड़ा व्यक्ति भगवान उसके बारे में सोचने लग गए, मतलब आपने हरि नाम लेना शुरू कर दिया, दो बार तो अभी ले लिया आपने, तो भगवान सोच रहे आप सबके बारे में, किनके बारे में, क्या करना है आप कल इसके साथ, कैसे इसको कुमार्ग से सुमार्ग पर डाइवर्ट करना है, सोच रहे हैं भगवान सबके। तो इस प्रकार से उस व्यक्ति के लिए सोचा, भगवान ने कहा ढूंढो इसके कोई पुण्य कर्म, चित्रगुप्त की फाइल आगे से पीछे पीछे से आगे 5000 पन्नों की पाप की फाइल पूरी घुमा ली, बोले कहीं तो कुछ होगा पुण्य, बोले महाराज भगवान कोई पुण्य नहीं किया इसने, किसी को एक रुपया दान नहीं दिया इसने, पूरा ऊपर नीचे फाइल देखी एक जगह मिल गया, लिखा हुआ था इसने एक बार सड़ा गला कुचेला मैला एक केला अकेला पड़ा था घर में फ्रिज में, जो जानवर भी नहीं खा सकते थे, इसने एक बूढ़े व्यक्ति को दान में दे दिया, ये पुण्य था। भगवान बोले चलो कोई बात नहीं है, हरि नाम ले रहा है ना, इसका ये पुण्य भी मैं स्वीकार कर लेता हूँ, इसके लिए कुछ मदद करता हूँ, नरक से पहले निकाला जाए, जेल से निकाले फिर निराय दुलाए पृथ्वी पर हरि नाम लेके फिर भगवत धाम ले जाए। तो भगवान ने उसके लिए एक सीढ़ी लगा दी, बोले जाओ विष्णुदूत जाकर के एक सीढ़ी फेंक दो, तो विष्णुदूत तो नरक में प्रवेश कर नहीं सकते, तो वहां नरक में बाहर से एक सीढ़ी लगा दी, बोले सीढ़ी ले लो चढ़ के आ जाओ, उसको बता दिए। अब वो आत्मा सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास करती, उससे पहले नरक के सभी लोगों ने देखा कि इसके लिए सीढ़ी आई है, कहां से आई है, भगवान धाम से, तो भैया चढ़ जाओ हम भी चढ़ जाते, मौका अच्छा है, सब चढ़ने लगे। अभी क्या कर रहे हैं सबको, हाँ जी क्या कर रहे हैं, धक्का दे रहा है, हटो 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 ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, ये भी नहीं दूंगा अरे अरे ये भी नहीं दूंगा, दे नहीं रहा है, और थोड़ी देर पर धक्का देते देते लड़ाई झगड़े पर गए, सीधी अदृश्य हो गई, और भगवान को कंप्लेंट करता है, बोला प्रभु ये क्या, इतना प्रार्थना किया इतना नाम जप किया इतनी प्रताड़ना की झेली इतनी मुश्किल सीढ़ी गायब हो गई। भगवान बोले जितना केला था उसके हिसाब से इतनी देरी रह सकती तो करते हैं हम कुछ नहीं, कृपा का अर्थ ही है कर और पा, कुछ तो करो पहले फिर तो पाओगे, रोते रहते हम लोगों की आदत है। एक बार मैं एक बड़े सीनियर वस्त्र भूल रहा था, मैं प्रभु जी हम कांग्रेगेशन प्रीचिंग करते हैं
भक्तों के बीच में इतना घिर जाते हैं कि अपनी साधना डिस्टर्ब हो जाती है, रात को 11 बजे भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, 12 बजे भी फोन आता है, प्रभु जी ये लड़ाई कर रहे हैं मेरे से मेरे हस्बैंड, माता जी बोल रहे हैं प्रभु जी ये मार रहे हैं, माता जी ये प्रभु जी ये पता आपको क्या बोलती है मुझसे, मंदिर में तो हरे कृष्णा बहुमत प्रणाम, घर पे डंडा लेके मारूंगी, बहुत ही विपरीत परिस्थिति है प्रभु जी। रात को 11 बजे फोन आते, मैंने पूछा कि भाई हमारी साधना की मैं तो पूरा दिन वेट करता हूँ कब पढ़ूंगा, रात को मैं अपना पढ़ने बैठता हूँ तो ये फोन आ जाते हैं, सुबह जब कर रहे होते तब फोन बजते रहते, कैसे बचे? प्रभु जी ने बोला उन भक्त ने कि कुछ भी कर लेना इस संसार का रोना धोना समाप्त नहीं हो सकता, क्योंकि इस संसार का नाम ही है, भगवान ने स्टैंप लगाया है दुखालयम अशाश्वतम मां उपेत्य पुनर्जन्मम दुखालयम अशाश्वतम, दुखों का घर है, यहां से बड़ा मुश्किल है कि दुख समाप्त हो जाए, तो दुख समाप्त नहीं होंगे लेकिन हमारी दृष्टि बदल सकती है, दृष्टि बदलने के लिए भगवत राम का नाम, भगवान का हरि नाम हमें लेना चाहिए, तो दुख समाप्त नहीं होते। तो आप आज क्या कर सकते हैं कि आपको अगर अपनी आत्मा के लिए आप काम करें, ऐसा ना हो आप भी उस केले वाले व्यक्ति की तरह अंतिम समय का इंतजार करें, बोले बाद में ले लूंगा, अंतकाल में नाम लिया नहीं जाता, जो करना है कब करना है? अभी। भगवान के नाम के प्रति आज प्रगाढ़ता लेके आए, अब मैं आपके लिए आया, प्रभु जी ने बुलाया, तो यहाँ आने के बाद में आज आप में से कोई व्यक्ति अगर इतना भी प्रण ले लेता है कि कोई व्यक्ति बोलता है मैं आज से ना शास्त्र पढ़ूंगा, रोज गीता पढ़ूंगा, भागवत पढ़ूंगा, चैतन्य चरितामृत पढ़ूंगा, कोई बोलता है नहीं आज से मैं 16 माला का जप करूंगा, कोई कहता नहीं नहीं मैं हर सोमवार के कार्यक्रम में 8 बजे नहीं आऊंगा 7 बजे आऊंगा, कोई भी एक प्रण ले लेता है तो ये मेरा यहाँ आना सफल हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने किसी कक्षा से कुछ सीखा नहीं तो कोई फायदा नहीं है बैठने का, कभी भी कक्षा में बैठने से जीवन परिवर्तन नहीं होता, कक्षा में बैठने से जीवन परिवर्तन नहीं होता, इंफॉर्मेशन तो मिलती है ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन नो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर परिवर्तन नहीं है जीवन में तो उस ज्ञान का कोई फल नहीं, बहुत साल निकल गए कहने से हम कभी भी भगवान के भक्त नहीं बनते, तो इसलिए जब भी किसी कक्षा में बैठे क्या करें, जब भी किसी कक्षा में मेरे अलावा कोई और भी बैठे तो रोज जहां जब भी बैठे तो क्या करना चाहिए, पेन पेपर लेके आना चाहिए, क्या लेके आना चाहिए, अगर नहीं है इसका मतलब क्या है, हमें सब कुछ आता है, आप क्या बताओ, हम तो एंजॉयमेंट के लिए थोड़ा हरि नाम सुन लेते हैं, अगर नहीं है तो उसमें से कुछ तो ऐसा पॉइंट होगा कि वो व्यक्ति ऐसा कुछ शब्द बोलेगा कि वो शब्द मेरा जीवन परिवर्तन, कोई एक भी चीज, ठीक है पेन कॉपी लेके गया हम तो बड़े एडवांस है, हम फोन के अंदर नोट्स पैड में ना नोट्स बना सकते, वो भी नहीं कर सकते तो दिमाग रूपी जो मेमोरी भगवान ने बनाई है इसमें कुछ एक ऐसी चीज लेके जाए घर कि आज मैं अपना जीवन परिवर्तन करूंगा, मैंने निश्चय किया है प्रभु जी आज के बाद मैं एक अच्छा भक्त बनूंगा, ऐसा भी कर लिया कुछ तो कर, आया बस इंतजार करते प्रसाद कब मिले, तो फिर ठीक नहीं है ना, क्योंकि आप देखिए श्री प्रभुपाद बोलते थे आत्मना रक्षसु, कहते थे आत्मा के रक्षा करने के लिए हमको कार्य करना चाहिए, अगर कोई व्यक्ति आत्मा शरीर पाने के बाद में भगवान की सेवा नहीं करती है, भगवान का भजन नहीं करती है तो सही मायने में वो आत्महत्या, आत्मा का हनन, इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अपनी आत्मा की रक्षा करनी, कहते हैं आत्मना सर्क रक्षेत ततो धर्मं ततो धनं, आत्मनाम विकृति सती कुतो धर्मं कुतो धनं, अगर आत्मा की रक्षा कर ली तो धर्म है, ततो धर्मं ततो धनं, तभी व्यक्ति ने धन पाया हरि नाम का खजाना, और अगर व्यक्ति ने आत्मा की विकृति कर दी, आत्मा की रक्षा नहीं कर पाया, आत्मा का परमात्मा की सेवा नहीं कर पाया, भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर पाया, तो उसने क्या कहा, कुतो धर्मम कुतो धनम, कैसा धर्म है कि कृष्ण का भजन नहीं किया, आजकल हम देखते हैं रोड पर लोग जाते हैं शिव जी के ना बहुत सारे भक्त बोलते हैं हम कौन है, शिव जी के भक्त, लेकिन यहां बोला गया अगर उस व्यक्ति ने आत्मा के लिए कोई काम नहीं किया, कावड़ उठा के लाया बेचारा 50 किलोमीटर चल के या 200 किलोमीटर चल के, लेकिन अगर उसने आत्मा के लिए काम नहीं किया तो कुतो धर्मम, धर्म है कहां, कुतो धनम, उसने क्या खजाना पाया,
और अगर उसने कृष्ण के लिए कुछ कर लिया लेकिन उसने लंबी लंबी यात्रा पैदल नहीं करी तो भी क्या कहा जाएगा, आत्मना रक्षे, अगर उसने आत्मा की रक्षा करी ततो धर्म वही धर्म है, ततो धनम वही धर्म। हरि नाम का भक्ति का खजाना एक ऐसा है न खर्चे न टूटे कोई नहीं लूटे। टूटता है कोई कहते थोड़ा प्रभु हरिनाम दे दो ना, आज मेरी तबियत खराब है, आप मेरा 16 नाम तो ऐसे करते हैं। अच्छा प्रभु जी आज ना मेरी बहन की तबियत खराब थी, आज मेरी 32 माला है, 16 उनकी 16 मेरी होता है। जिसने जितना नाम ले लिया उतना ले लिया, और बहुत जरूरी है क्योंकि काल हर वक्त इंतजार कर रहा है। पता है कैसे, सर्प के समान, सांप जैसे चूहे के पीछे पड़ा होता है उसको खाने के लिए, वैसे ही मृत्यु हमारे पीछे से। हम में से बैठा हुआ कोई व्यक्ति बोल सकता है नहीं मेरी मृत्यु तो है ना अभी 200 साल बाद आएगी, मैं ना सबसे लंबा जीऊंगा, या फिर 20 साल में बता सकता है, फिर भी हम सीरियस नहीं। परीक्षित महाराज को तो मालूम था कि 7 दिन में आएगी, फिर भी सीरियस थे। 7 दिन का टाइम तो था, 4 दिन एंजॉय कर लेते, 3 दिन कथा सुन लेते। हमारे पास तो 1 मिनट का भी चाहिए, फिर भी हम सीरियस नहीं। और अगर हम सीरियस नहीं है क्योंकि हम जानते नहीं कि मृत्यु सर्प के समान बैठी। चूहे को जानते हैं आप लोग, चूहा रेड देखा है कभी, सभी के घर में होता है, पालतू सभी घर में। और चूहा अपने लिए बिल बनाता है, जानते हैं आप चूहे का बिल, चूहा बिल बनाता है, उसमें अपना दिल लगाता है ना, जब हम अपना घर बनाते दिल लगा के, बोले बड़ा दिल लगा के बनाया है चूहे का बिल, उसको क्या लगाता है अपना दिल। और उसने वो बेडरूम बनाता है, 2 बेडरूम, एक गेस्ट रूम एक अपना मास्टर्स रूम, एक चिल्ड्रन रूम एक ड्राइंग रूम, 4 ऐसे बनाता है। और 2 गेट बनाता है, एंट्री गेट एक एग्जिट गेट, इधर से कार पार्किंग होगी इधर से बाहर निकल पूरा। इस प्रकार का चूहे का बिल होता है। लेकिन एक है सांप सर्प, उसका कोई बिल नहीं होता, सुना कभी, लेकिन सुनते हैं सर्प का बिल है, बचकर चलना आगे जाकर के सांप का, लेकिन सांप का कभी बिल नहीं होता। सांप मेहनत नहीं करता घर बनाने, वो बना बनाया खाता, बना बनाया क्या करता है, तो इस तरह से वो क्या करता है, जब देखता रहता है चूहा मेहनत कर रहा है, सांप दृष्टि लगा लेता, कह रहा वाह बहुत बढ़िया घर बन रहा है, इसी में रहेंगे, बनाने दो इसको मेहनत करो। और बेचारा घर बनाता है, पहले तो मिट्टी मुंह से इधर उधर करता है, ड्राइंग रूम बेडरूम चिल्ड्रन रूम सारे बने, उसके बाद खाने पीने के लिए घरों से आपके घर से काजू बादाम चुरा चुरा के ले जाता है, छोटा छोटा आपके तो अरे प्लेट में रखा था, थैला फट गया कहां गया पता, वो ले जाता अपने घर में, खाता भी नहीं है खुद, कंजूस आदमी की तरह, बच्चों के लिए संभाल संभाल के रखता है, आगे जाने वाले खाएंगे मेरे बच्चे। और उसके बाद में जो सर्प होता है वो ध्यान लगाता है मृत्यु आने इसको खाने के लिए, क्या करता है एंट्री गेट में पूंछ डालता है, जब चूहा अंदर जाकर सो रहा होता है तो एंट्री गेट में से पूंछ डालता है, तो पूंछ अंदर जाती है तो चूहा घबराता है, सांप आ गया, घबरा के भागता है, सांप आ गया इधर, तो सांप किधर भागेगा, हाँ जी एग्जिट गेट की तरफ, एग्जिट पे कौन बैठा होता है, उसका मुंह बैठा होता है, चूहा बाहर निकलता है, कह रहे वेलकम घर से खा ले। ऐसे हमारे साथ होता है, कष्ट आते हैं ना भौतिक संसार के, भाग कर इधर से कष्ट आते हैं, उधर से भगवान पिन डालते हैं भौतिक संसार का, आदि देवी आदि भौतिक आदि आत्मिक, इधर भागता है आदमी, किधर जाओ उधर मृत्यु बैठी दिखा फिनिश। इतना ही समय भागते भागते हरिनाम ले लो वरना टाइम नहीं, बाहर निकल के मृत्यु, उस समय में आदमी बोला था नहीं अभी ना, अभी जब रिलैक्स होऊंगा ना तब भजन करूंगा, अभी तो प्रोजेक्ट टाइम ही नहीं मिलता। अर्जुन ने कब भजन किया, ऐसे तो नहीं बोला कभी कृष्ण को कि अभी आप क्या ये टाइम वेस्ट कर रहे हो, अभी लड़ाई सामने है, आगे लेके गीता लेके बैठ गए, लड़ने दो फिर बाद में पिकनिक पे जाएंगे ना, फिर वहां पर हम गीता सुनेंगे वृंदावन, ऐसा सामने लड़ने के लिए तैयार है, युद्ध क्षेत्र में अपने परिजन तैयार है सामने, और वो क्या कर रहा है, तो 2 भाइयों की लड़ाई हो जाए मान लो मोहल्ले में, 2 घर है आयु वजह, और दोनों अपने अपने घर से लाठी लेके आ जाए, और उस समय उनका एक व्यक्ति निकले बच्चा कहे चलो गीता पढ़ते लड़ाई मत करो, सुनेगा कोई गीता, प्रैक्टिकल है, अर्जुन ने सुना, इसीलिए सौ श्री भगवत धाम गए, इसीलिए कृष्ण भावना कभी तो न जरूरी, इम्पॉसिबल कैन बिकम पॉसिबल, क्योंकि इम्पॉसिबल जो शब्द है उसके अंदर पॉसिबिलिटी है, I am possible. लगता बड़ा अजीब सा है, कौन सुनेगा हमारी बात, लेकिन सुनने को तैयार है, हम जाते नहीं है, हम बताते नहीं है, पहले खुद भी नहीं पढ़ते। चैतन्य महाप्रभु ने कहा जन्म सार्थक करी करो परोपकार, पहले अपना जीवन को सार्थक करो, फिर आप जब बोलोगे तो सब आपकी बात सुनेंगे। लेकिन हम मदद नहीं कर पाते किसी की भी, किसी को भी हम सुना नहीं पाते, समझा नहीं पाते अपनी बातें, क्योंकि हमें खुद ही विश्वास नहीं है कि हम भगवान के भक्त हैं और भगवान हमारी बात सुन रहा है। आपको विश्वास है भगवान सुनते हैं? कितने लोग मानते हैं भगवान सुनते हैं? भगवान काली पहाड़ी पर अमावस्या के दिन काली सी चींटी के पैर में काला घुंघरू बंधा होता है, उसकी रुंझुन रुंझुन जो होती है ना, वो भी कृष्ण के कान में पड़ती है और कृष्ण ऐसे में सुनते हैं। हमारे ऐसा व्यक्ति चलेगा तो सुनते हैं भगवान, लेकिन हमको लगता है कहां सुने, भगवान तो सुनता नहीं है। वेयर इज गॉड? कल मैं एक जगह क्लास दे रहा था, वहां पे व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा था, प्रभु जी एथिज्म नास्तिकवाद पूरे विश्व में बढ़ता जा रहा है, इसका क्या कारण है? मैंने सिंपल सा वही कारण कहा जो आपको भी बताया, हमारा विश्वास नहीं है कि भगवान है। किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में विश्वास ही ना हो कि यहाँ पे डिग्री मिलेगी चार साल बाद, तो कौन अपने बच्चे को भेजेगा? पहले विश्वास करते हो, पांच चार साल पढ़ते हो फिर डिग्री मिलती है, कि पहले भी कहते पहले डिग्री ले लो फिर पढ़ना, ऐसे नहीं। तो कृष्ण मिलेंगे लेकिन उसके लिए आज मेहनत है, घबराना नहीं। भागवत में वर्णन है 13 प्रकार के लोगों को भगवान ने आपके पीछे लगा रखा है साक्षी के रूप में, हर एक चीज आपकी देख रहे हैं भगवान, क्या क्या कर रहे हो, अंधेरे कमरे में भी क्या सोच रहे हो वो भी भगवान जान रहे हैं, सीसीटीवी लगाया सबके हृदय में परमात्मा के रूप में। शास्त्र में वर्णन है कितने लोग हैं, आज काउंट करिएगा कि कितने लोग आपको देखते हैं। सूर्य अग्नि खमरुत देवा कितने हुए? सूर्य अग्नि खम मरुत देव सोम सन्या संध्या अहनि दिशा कितने हुए? कम को स्वयं धर्मम इति हे एतादशत साक्षिणा, ये 13 साक्षी हैं। कौन कौन? सूर्य, सूर्य देखता है। अग्नि, आपके घर में जब आप खाना पकाते हो किस भावना से खाना पका रहे हो, इसीलिए कहते हैं जैसा खाएगा अन्न वैसा बनेगा, अग्नि साक्षी। अरे बोले कहां भगवान बोले अग्नि में, कहां भगवान बोले ये सूर्य में। श्रील प्रभुपाद जब सूर्य को देखते थे तो प्रणाम करते थे, यक्षरेशो सवितां सकल ग्रहणां राजा समस्त मूर्तिर्शेष तेजं यस्याद्या भ्रमति संवृत्त काल चक्रं गोविंदमादि पुरुषं तं मम भजामि। श्रील प्रभुपाद को सूरज में भी भगवान दिख रहे हैं, जानते ही भगवान, पत्ते में भी भगवान दिख रहे हैं। प्रहलाद महाराज को कहां दिखते थे? हमें में नहीं दिखते थे, हर जगह दिखते थे। इतो नरसिंह ततो नरसिंह यतो यतो यहां भी ततो नरसिंह, जहां जा जाता वहीं भगवान है, सब जगह भगवान है, लेकिन हमें नहीं दिखते। अब तो भगवान की मूर्ति के भी ये भगवान है, क्वेश्चन पूछ अच्छा ये वाले भगवान वहां भी नहीं दिख रहे, सोचो अपनी स्थिति क्या है। इस तरह सूर्य साक्षी, अग्नि साक्षी, खम, खम मतलब क्या होता है? आकाश, आकाश साक्षी। कितना बड़ा आकाश है, आकाश ऐसा है अमेरिका चले जाओ आकाश बंद हो जाएगा, दुबई चले जाओ आकाश पूरे में विस्तार है, आकाश बंद। मरुत, मरुत कौन होते हैं? हवा। और देव, 33 करोड़ देवी देवता, वरुण देव, अरुण देव, बहुत सारे देव देख रहे हैं। सोम, सोम कौन है? चंद्रमा, रात्रि में देख रहा है, क्या क्या तुम देख रहे हो, टीवी पे सीरियल देख रहे हो, सास भी कभी बोलते सास भी कभी बहुती है, ये नहीं सोचते बहू भी कभी सास बनेगी तब कितने कष्ट आने पर। तो इस तरह से सोम, संध्या, संध्या मतलब शाम का जो समय है, और अहर्ण्य, अहर्निश बोलते हैं, अहर्निश मतलब दिन और रात, और दिशाएं, दिशा, दिशाएं जितनी 10 दिशाएं हैं ये देख रही हैं, जिस दिशा में जाओगे कहां जाओगे, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। लोग न्यूज पढ़ते हैं ना, न्यूज, न्यूज की फुल फॉर्म होती है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, कहाँ जाओगे खबर पढ़ के भी कहाँ जाओगे, ये चारों दिशाएं, और इसके आगे भी नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, 8 दिशाएं, ऊपर नीचे टॉप बॉटम कुछ भी कर लो, दिशाएं भी भगवान की साक्षी है। और बताएं कम, कम मतलब जल, ये जल भी साक्षी, जब पानी पीते हैं पानी बता रहा होता है क्या सोच रहा है, भगवान को अपडेट दे रहा होता है, जल कम। और कु मतलब पृथ्वी जिससे आप खड़े हुए हैं, स्वयं आपके अंदर बैठे परमात्मा, धर्मम धर्मराज यमराज देख रहे हैं, और इति हे एते दशरथ साक्षिणाम, ये सब साक्षी। अब बताओ ऐसी कोई जगह है जहां पर भगवान नहीं देख रहे हो, फिर भी हमने बताया, बोले क्या जरूरत है हरिनाम लेने की, तो जल्दी जल्दी क्या जीना, अभी तो जीना बरसों में, आज करे सो काल, कल काल करे सो परसों, जल्दी जल्दी क्या करना प्रभु जी, अभी तो जीना लेकिन बरसों का जीना है। मृत्यु तो किसी भी पल आपका इंतजार कर रही है। वृंदावन के एक भक्त बहुत सुंदर बोलते हैं, कहते हैं क्षण भंगुर जीवन की कलिका, ये क्षण भंगुर जीवन की जो कलिका है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात में जाने खिले न खिले। अब रात को सोए, सुबह उठे ना उठे, इस बात की गारंटी है। फोन चार्जिंग में लगाते, कभी कभी आप उठते पता चलता है कि फोन चार्जिंग सही से प्लगिंग नहीं होता। ऐसे ही आप सोए और सुबह बोले बैटरी ले लो, बैटरी नाम ही है गंदी चाय बैटरी, बैटरी ले लो बैटरी, तो उसके बाद क्या होगा, उठाते रह जाएंगे। बोले व्यक्ति को उठो 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 उठो, वो बोलेगा कि अरे डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर को बुलाओ, डॉक्टर आ जाएगा, ही इज नो मोर, समाप्त हो गए। और ठीक है, व्यक्ति पूछेगा भगवान के पास जाकर के, बोले भगवान मैं तो रात को अच्छा खासा सोया, सुबह नो मोर। भगवान बोले अच्छा हो, आज तो मैं थोड़ा बिजी हो गया, तुमको उठाना ही भूल गया। तो मतलब वेकअप की जो है अलार्म वो भगवान के हाथ में है, इतनी सूक्ष्म रूप में भगवान जठरग्नि के रूप में आपके पेट में काम कर। कौन व्यक्ति कृष्ण भावना को वही नहीं होना चाहेगा, बोले अरे सब कुछ तो भगवान है, तो फिर आप क्यों हम भगवान के भक्त बनना नहीं चाहेंगे। और कोई मार्ग ही नहीं बचता है हमारे पास में, ऑप्शन होता आदमी सोचेगी, मथुरा रोड से मथुरा जाया जाता है, वृंदावन जाया जाता है, और कोई ऑप्शन ही नहीं, तो फिर वही उसी से जाएगा। तो इसी प्रकार से एक ही रास्ता है, एक ही मार्ग है जिसपे जा सकते हैं। तो क्षण भंगुर है ये जीवन, जैसे कली कल रात को जाने, सुबह प्रात को खिले न खिले, ऐसे ही हमारी जीवात्मा रात को इस शरीर में सोए, सुबह उठे न उठे। कहते हैं मलयाचल की ये मंद समीर, मंद समीर होती है मतलब मंद हवा, मलयाचल पर्वत है ना जहाँ चंदन मलय चंदन पाया जाता है जगन्नाथपुरी के पास, मलयाचल की ये मंद हवा कल प्रात में जाने चले न चले। हो सकता है कभी कभी बहुत गर्मी लगती है, सुबह आदमी बोलता है मौसम अच्छा है, लेकिन दूसरे पल बदल जाता है। ऐसे ही हमारा जीवन भी किसी पल बदल सकता है। कहते हैं कलिकाल कुठार लिए फिरता, कलिकाल कौन है, यमराज कलिकाल, काल उन्होंने छोड़ रखा है, जाओ और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता उसको उठाकर के नर्क में ले आओ। कलिकाल कुठार, कुठार क्या होता है, फावड़ा लेकर के, हथौड़ा लेकर के हमारे पीछे घूम रहा है, किसी भी पल सर्प जैसे चूहे को खाता है, ऐसे ही कलिकाल हमारा कभी भी कुठार से गलत काट सकता है। कलिकाल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट लगे न लगे, रज ले, क्या बोलते हैं, रज ले अपने जीवन में, तू रज ले ले किसकी, वृंदावन तू रट ले भगवान का नाम, ये सारी चीजें अगर तू आज करता है, रट ले हरि नाम इस जिह्वा से, कल प्रात में जाने चले न चले। सुबह हो सकता है चल ना पाए, इसलिए आज क्या बोलो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेद इंद्रियम ग्रहम, सेवन उन्मुख ही जिह्वा दो स्वयं एवं स्मृतम अदा। इस जिह्वा को भगवान ने दिया है ज्यादा चबड़ चबड़ करने के लिए, किसलिए दिया है, इससे दो काम करने हैं, सेवा उन्मुख ही जिह्वा दो, एक तो भगवान का नाम लेना है और इससे भगवान की कथा करनी है और भगवान का प्रसाद खाना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं करना। हाँ और कुछ काम भगवान ने, दो काम, कौन कौन से, क्या काम करे भगवान ने, दो, हाँ जी, भगवान का नाम जप करना है, कथा करनी है और प्रसाद देना है, इसके अलावा अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, जितना हो सके उतना अपने समय का क्या करना है, सदुपयोग करना है। अव्यर्थ कालत्व में भक्त का गुण होता है अपने जीवन का एक पल भी वेस्ट नहीं करना, अव्यर्थ कालत्व, तब वो व्यक्ति भक्त बनने के स्तर पर आता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि आज हम हरि नाम को क्या ले लें, दृढ़ता से ले, वरना समय निकल जाएगा और हम कभी भक्त नहीं बन पाएंगे। ठीक है, समय हो गया है 9:30, जो तुमने सवाल में बोला था, बोलने को भी बहुत कुछ है यहाँ पर, लेकिन आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना फिर हम इसे समाप्त नेक्स्ट टाइम फिर और आगे इसके पूछे। किसी का कोई प्रश्न है,
संशय रहित हो गए हैं या फिर कुछ समझ ही नहीं आया? हाँ जी, हाँ भगवत गीता में लिखा है आत्मा न काटी जाती है, नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम कलो दान्ति आपो नैनम धृष्यति मारुतः, न उसे जलाया जा सकता है, न काटा जा सकता है, न दिहुआया जा सकता है, न सुखाया जा सकता है, तो फिर आत्मा को कष्ट कैसे मिलता है? तो हर चीज का अरेंजमेंट किया भगवान ने, आत्मा को एक अतिवाहक शरीर प्रदान किया जाता है जिस शरीर को बोला जाता है यातना शरीर। यातना शरीर के अंदर कष्ट तो होता है लेकिन यातना शरीर कभी समाप्त नहीं होता। आपकी जब नाखून छीले जाएंगे दर्द तो उतना ही होगा लेकिन शरीर को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इस प्रकार का शरीर है और ट्रेनिंग पीरियड कहलाता है, समय पर ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे व्यक्ति ने बहुत गंदे काम किए, पापी जीवन जिया, अब उसके कर्मों के अनुसार कहते हैं जैसा करोगे वैसा उसको योनी मिलने वाली है। एक जानवर की जो गटर में रहता है, कौन सा जानवर? योनी मिलने वाली। लेकिन व्यक्ति अच्छा खासा एसी में सो रहा था, उठाकर गटर में सुला दे, ये तो भाई कोई इंसाफ नहीं हुआ, ट्रेनिंग ही नहीं। अभी तक तो वो हलवा खाता था, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, और कल उसको मल खाना पड़ेगा, स्टूल तो खा पाएगा। रात को तो वो हलवा खाता था, मरने के बाद कर्म ऐसे थे कि अभी मल खाना तो खाएगा, जीवात्मा तड़पेगी। लेकिन भगवान ने कहा सुहृदम सर्वभूतानां, मैं तो सबका मित्र हूँ, तो फिर वो आत्मा के साथ क्या होगा? तो भगवान कहते हैं कि उस यात्रा की, उस आत्मा की यात्रा होती है, उसके लिए डिसाइडेड है कि उसके कर्मों के अनुसार उसको एक सुअर के शरीर में जाना है। लेकिन उससे पहले उससे ट्रेनिंग दी जाएगी। ट्रेनिंग कहाँ होगी? उसके लिए ट्रेनिंग पीरियड है नर्क में। वहां उसको एक बड़ी 28 प्रकार के नर्कों का वर्णन भागवतम के 5वें स्कंद के 29वें अध्याय में हुआ है। उन नर्कों के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट है अलग अलग प्रकार, और उन नर्क में आदमी को पूरा डाल दिया जाएगा, और डालने के बाद में उसको एक मल की कड़ाई में डाला जाएगा जहां पर सिर्फ गरम उबलता हुआ मल है, शरीर में डालना। अब खाएगा भी वही, पिएगा भी वही, वो जीवात्मा अभी तो अच्छा खासा खाना खा के मृत हुई है, अपना शरीर छोड़ करके आई है, वो कैसे खा लेगी? चाहे अतिवाहक शरीर है चाहे आत्मा शरीर, खाया नहीं खा रहा। तो जब तक उसकी ट्रेनिंग होती है वो खाने की आदत पड़ेगा, खाएगा वॉमिट करेगा, खाएगा वॉमिट करेगा। जब इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि आप वो खा करके कह रहा करता क्या नहीं है, मर जाएगा लेकिन खाने का और रास्ता ही नहीं, ऑप्शन ही नहीं, तो फिर जब से खाने की आदत पड़ जाएगी उठा के उस जीवात्मा को यमदूत कहाँ ले जाएंगे? उन्हें अभी तैयार है किसी एक माता और के अंदर क्या कर दो, इसको स्थानांतरित कर दो इस आत्मा को माता के गर्भ में, और उसके गर्भ से वो सूरत की होने में जरूर है। अब उसको पैदा होते ही मल खाने को मिलेगा तो क्योंकि ट्रेनिंग हो चुकी। इस तरह से एक बार एक व्यक्ति था, नरक चला गया, जितने पाप किए थे उतने ही पुण्य भी किए, जितने पाप उतने, चित्रगुप्त बोले बड़ा कंफ्यूजन स्टेटमेंट है, जितने पाप उतने ही पुण्य से कहां ले जाएं, नरक की स्वर्ग? तो बोला गया कि आप डिसाइड कर लो आत्मा से कहां जाना चाहो। बोले कि मैं देख करके बताऊंगा, मैं तो कलयुग का व्यक्ति हूँ, दिल्ली से आया हूँ, दिल्ली में तो आदत है विंडो शॉपिंग करने, पहले माल का रेट पूछते हैं चार दुकानों पे, उसके बाद 5 जगह खरीदते हैं, तो दिखा दो नरक कैसे स्वर्ग। तो बोले ठीक है, पहले क्या देखना चाहो? बोले स्वर्ग के बारे में तो सुन रखा है, अप्सराएं होती हैं बड़े सुंदर सुंदर, अमेरिका से 1000 गुना ज्यादा फैसिलिटी है, वो सब देख, नर्क दिखा दो। कष्टों के बारे में सुना है कि वो सच्चाई कितनी है, क्योंकि हमें बिलीव नहीं होता नर्क नाम की कोई चीज। यमदूत को दो को भेजने में जाओ, तो दो यमदूत उनके साथ साथ चले गए, पहुंचे नर्क के द्वार में, खड़ा कर दिया, बोले वो देखो नर्क। तो नर्क में देखा कि हमारे यहाँ के बॉलीवुड स्टार्स जितने भी हैं वो सब वहां पर चाय कॉफी पी रहे हैं, बिपाशा बसु, जॉन अब्राहम, वो सब वहां पर चाय कॉफी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, घूम रहे हैं। तो अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी जगह है, नहीं आना चाहता हूँ मैं तो। तो बोले नहीं आप एक बार स्वर्ग भी देख लो। बोले नहीं नहीं, वहां तो अप्सरा है, उन्हें देखा नहीं देखा, उनसे कोई हमारा मतलब मानसिक रूप से हमारा कोई प्रेम नहीं है, तो अपने जॉन अब्राहम तो अपने देखे हुए, उनके साथ रहने का मौका मिल जाए, नर्क मंजूर, ये नर्क अच्छा है। कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, हॉट ड्रिंक्स पी रहे थे और घूम रहे थे, डांस चल रहा था, म्यूजिक जोर ये बड़ी अच्छी जगह, ले वापस यमराज के सामने रखा गया।
क्या पसंद आया तुमको? कहा जी नर्क जाऊंगा। कहा अच्छा, पहली बार कोई देखा है ऐसा? वेरी नाइस, तो फॉर्म पे साइन कर दो, बाद में कहीं कोई कंप्लेंट करने आओगे। फॉर्म पे साइन कर ले, कंसेंट फॉर्म पे ले जाओ। दो यमदूत ले गए, ले गए तो जैसे ही प्रवेश द्वार में घुसाया उसको, तो देखा वहां पे बड़ी बड़ी कढ़ाइयां हैं, काले काले राक्षस से बड़े बड़े विशाल हंटर मार रहे हैं और नाखून छील रहे हैं, बोए खींच रहे हैं और आदमी चिल्ला रहा है बुरी तरह से। तो ये कह रहा है ये क्या है, अभी तो ट्रीटमेंट शुरू भी नहीं हुआ, घबरा गया। बोला वो कहा है? वो भाषा वासु, वो जौन हंस रहा है, वो कहां गए सारे? तो दोनों यमदूत हंस रहे हैं, अरे तुम कलयुग के जीव हो ना, तुम भी एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में आ गए। तो ऐड बनाया हुआ है हम लोगों ने, ऐड में जो होता है वो स्टोर में ढूंढ लो, तुम भी विज्ञापन के माया जाल में क्या हो गए हो। हम कलयुग के जीव हैं, इसी कारण हमारा विश्वास नहीं है। शास्त्र में लिखा है सब कुछ, नरक है। और इसे कोई प्रश्न है?
उनको स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने स्वर्ग में आकर दीक्षा प्रदान किया। श्रील प्रभुपाद जी ने कई प्रवचनों में तुकाराम के बारे में वर्णन किया। बहुत उच्च श्रेणी के वकारी संप्रदाय के संत हैं तुकाराम, तो स्वशरीर भगवान। और वैसे भी स्वशरीर जाए या स्वशरीर ना जाए, जिस व्यक्ति ने अपने मन बुद्धि अहंकार को भगवान की सेवा में लगा दिया, मन को बुद्धि को और अहंकार को, उसका क्या होता है, सूक्ष्म शरीर टूट जाता है और उसके बाद उसकी आत्मा जो सच्चिदानंद है उसका पूर्ण शरीर सच्चिदानंद बन जाता है। इसीलिए जो सन्यासी होते हैं, जो उच्च स्तरीय भक्त होते हैं, उनके शरीर की इतनी पूजा की जाती है समाधि में रख के, क्योंकि उनका शरीर दिव्य शरीर हो जाता है, क्योंकि उनका सूक्ष्म शरीर टूट गया। मन बुद्धि अहंकार ये छोटा शरीर अंदर है जो आत्मा का आवरण बना के रखता है, ऊपर का शरीर मल मूत्र का पिटारा है। लेकिन जब ये सूक्ष्म शरीर टूट जाता है तो आत्मा का संबंध सीधा किससे हो जाता है, मल मूत्र के शरीर से। और जैसे ही शरीर को टच होता है वैसे ही क्या होता है, ये शरीर भी क्या बन जाता है, सच्चिदानंद विग्रह बन जाता है। और जैसे आप उदाहरण ले सकते हैं दृष्टांत के रूप में, एक लोहे की एक रॉड है, उसको किसी और दूसरे लोहे की रॉड पे लगाओ तो वो भी गर्म हो जाता है। ऐसी सच्चिदानंद आत्मा इतनी शक्तिशाली भगवान का अंश है, स्पर्श मात्र होते ही पूरा शरीर दिव्य हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं अरे वो बड़े महाराज हैं, उनका शरीर बड़ा दिव्य है। वो दिव्य कैसे हुआ, क्योंकि उन्होंने अपने मन को सूक्ष्म शरीर को तोड़ दिया, मन क्या कर दिया, कृष्ण के चरणों में लगा दिया। बुद्धि क्या कर दी, बुद्धि कृष्ण की सेवा में लगा दी। अहंकार क्या कर दिया, भगवान की शरणागत कर दिया। तीनों सूक्ष्म शरीर टूटते ही आत्मा शरीर से संबंध कर जाती है, शरीर दिव्य बन जाता है। और इसी दिव्यता के कारण आज भी वृंदावन में 64 समाधि क्षेत्र में कितने पुराने आचार्यों की समाधि है, उनके शरीर वहां पर स्थापित किए हैं और उनके शरीर से इतनी दिव्य शक्ति मिलती है। और कई भक्तों ने उनको वहां पर समाधियों में पुराने आचार्यों को भ्रमण करते देखा, हमारे आज की स्थान के आचार्यों में। तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे, अलग टॉपिक है लंबा, पर है। आगे से कोई क्वेश्चन? हाँ मान लीजिए नहीं, सबके लिए समय चल रहा था।
जैसे और तो किसी ने सुनी नहीं ना, हाँ
हाँ, और किसी ने सुना नहीं जब भगवान सुना रहे थे। क्यों नहीं सुना, क्योंकि उनके पास में भगवान को सुनने के लिए शक्ति नहीं थी, कान नहीं है। जैसे आज हमको प्रवचन करने के लिए माइक की आवश्यकता है कि, क्योंकि सुनते नहीं, जोरों से बोलना पड़ता है बीच बीच में, भगवान का नाम लो, हरि नाम लो, सो जाता है आदमी, आलसी शरीर है ना। कहते हैं ना कलयुग के जो जीव है वो कैसे हैं, कलयुग के जीव हैं भोजन के होशियार। किसके होशियार है, महाप्रसाद गोविंद होगा तो अभी कोई शुक्र दिखा दे, कोई कलयुग के जीव हैं भोजन के होशियार है ना। और क्या है, राम नाम के आलसी भोजन के होशियार, कलयुग के ऐसे जीव को बार बार धिक्कार। राम नाम की आलसी है, नाम लेते में नींद आती है। तो जब उस नैमिषारण्य में प्रवचन हो रहा था, सुत गोस्वामी शौनक आदि ऋषियों को, 88,000 ऋषियों को प्रवचन दे रहे थे, माइक था, तो 88,000 ऋषियों ने कैसे उनकी बात सुन ली, सुत गोस्वामी कोई वॉइस थ्रो तो नहीं कर रहे थे कि और 88,000 लोगों तक आवाज चली गई।
शुद्ध गोस्वामी जब प्रवचन दे रहे थे, एक एक श्रोता शौनक आदि ऋषि अपने कानों को भगवान के उसमें शुद्ध गोस्वामी के मुख के तरफ कंसंट्रेट करके सुन। कभी कभी होता है ना, कोई दो लोग बातें कर रहे हो और आपके बारे में बुराई कर रहे हो, कान अपना चला, मैंने सब सुन लिया क्या बोल रहे हैं। जब सुनना चाहेंगे तो सुने, बाकी वहां पर कोई सुनने नहीं चाह रहा। भगवान ने युधिष्ठिर को भी सुनाना चाहा। युधिष्ठिर धर्म ऋषि थे, धर्मराज थे और वो राजऋषि थे। भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तिम राजऋषो विधम, राजा भी हो ऋषि भी हो ऐसे को ज्ञान देना चाहिए। परंतु युधिष्ठिर ने सुनने को तैयार। युधिष्ठिर ने कहा जब कृष्ण ने आत्म तत्व का ज्ञान देना चाहा, युधिष्ठिर कहते हैं आप तो बहुत छोटे हो मेरे से उम्र में, आप क्या मुझे समझाओगे आत्मा के बारे में, कृष्ण किसी और दिन चर्चा करेंगे, नहीं सुना। तो भगवान ने अर्जुन को जब सुनाना चाहा, अर्जुन ने जब शरणागति दिखाई तब अर्जुन की भगवान ने, तो इसलिए शरणागति होगी। तो पहले अध्याय में कहां भगवान बोल पा रहे हैं, अर्जुन बोलने नहीं दे रहा, इतना बोलता है बोलने नहीं दे रहा। भगवान कह रहे पहले बोल लो यार अपना बोल लो। ऐसे जब कभी कभी कोई मंदिर में आते हैं ना काउंसलिंग लेने, तो लोग बोलते रहते प्रभु जी मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ सुन लो कहते उसकी, बोल दिया भरा बैठा बिछारा बोल। तो कृष्ण ने अर्जुन को कहा बोल लो। उसके बाद जब उसने क्या कर दिया, कार्पण्य दोषम उपहस्यवाव प्रच्छामि धर्म समूचेता, जब उन्होंने भक्त बनने पर स्वीकार कर लिया तब भगवान ने बोला पंडित जैसी बातें करते हो, नारू शोचन दी पंडिता, पंडित जैसी बातें करते, छोड़ो ये पंडितगिरी की बातें, भक्त बनो, आत्मा न जन्म लेती है न मरती। तब ये तत्व वहां पर आता। इससे पहले क्या हुआ, उन्होंने क्या कहा, शिष्यस्य अहम् शादी माम त्वं प्रपन्नम्, मैं शिष्य हूं आपका, आपके शरणों में चरण में स्वीकार करता हूं शरणागति, अब आप मुझे ज्ञान दीजिए मैं तैयार हूं। जब व्यक्ति बोले मैं सुनने को तैयार हूं तब आप सुनाओगे उसका फल अलग है। बाकी लोग भी थे गीता गा रहे थे लेकिन सुनने को तैयार नहीं, तब लड़ने को तैयार। कई बार होता है ना दो लोग लड़ाई कर रहे हो, आप बोलो मेरी बात तो सुनो, अरे यार मेरी बात तो सुनो, सुनने को तैयार नहीं तो कौन सुनेगा। अर्जुन तैयार था इसलिए उनको ज्ञान प्रवेश किया, वरना उनको तैयार नहीं था। और संजय क्यों तैयार थे, क्योंकि उन्होंने वेद व्यास को शरणागति की थी और गुरु के कारण दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित था, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान प्रकाशित हुआ था और वो दिव्य दृष्टि पाकर के महाभारत का युद्ध देख पाए। तो शरणागति सबसे उत्तम चीज है। हाँ जी कौन सी, हमें चिंता नहीं उनकी, हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी मुश्किलों का स्वामी सुदर्शन चक्रधारी। ठीक है।